निरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ता अंगश्यामलि छटाभिरभितो मन्दीकृतेन्दीवरम् जर्दन जागुदरोषि संविदद संपट्टम्बरस्य वृन्दारण्य निवासिनं हृदि न सद्दामाभिरामोदरम् राधास्कन्द निवेशितोज्ज्वलभुजं ध्यायेम् दामो तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति दिव्यै राधे तन्नय माम चरणम्। भजन रहस्य षष्ठ जाम साधन सायंकालीन भजन भाव। भाव के संबंध में भक्ति विनोद ठाकुर का भाव हमने बतलाया। प्रेम का अंकुर है, और शुद्ध सत्व स्वरूप शक्ति के हृदय में संबित और हलादिनी का सार समवेत भाव जो है वो कृष्ण की सेवा की परिपाटी उनमें दिखला है। वही जब भक्तों का अनुगमन करने से, उनकी कृपा से, कृष्ण की विशेष कृपा से रति या शुद्ध सत्व अथवा भाव भक्तों के हृदय में संचरित होता है। बिना भगवान की कृपा का, बिना भक्तों की कृपा के ये भाव होना असंभव, और उसके लिए भी बतलाया यदि भगवान किसी को वरदान करे या भगवान का दर्शन कोई करे या गुरु के रूप में अंतःकरण में स्फूर्ति कर दे तो यह रति हो सकती है, अन्यथा यह अप्राकृत रति नहीं हो सकती। विशेष करके उन्नत परम भागवत यदि हो रसी रागानुगा उनके संग से ये हो सकती है, उनकी कृपा से हो। उसके बाहरी लक्षणों से यदि अष्टसात्विक विकार भी कभी दिखता है, नकली हो सकता है, किंतु जब यह भाव प्रकट होगा किसी के अंदर में तो उसके लक्षण है। किसी के कहने से नहीं, रोने से नहीं, पुलक और अश्रु से नहीं, हमने देखा है बहुतों को। कभी दिखलाने के लिए दिखलाया, इसके बाद में विषयों में फिर फंस जाते हैं। इसलिए ये नहीं, इसलिए रूप गोस्वामी जी भक्त स्वामी सिंधु में कहते हैं इसके लक्षण है, लक्षण को देखो। शांति अपर्थकाल विरक्ति मान शून्यता आशा बंध समत कंटा नाम गाने सदा रुचि अशक्ति तदगुणाख्याने प्रति तदवसत स्थले इत्यादि अनुभाव सुजात भावांकुरी। यानी प्रेम का अंकुर शुद्ध सत्व जब किसी साधक के हृदय में उदित हो जाता है तो शांति क्षमा गुण अव्यर्थ कालत्व एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाएगा। विरक्ति संसारिक विषयों से विरक्ति मान शून्यता मान ग्रहण करने में इच्छा नहीं रहेगी। आशा बंध कृष्ण जरूर मिलेंगे उनकी सेवा जरूर मिलेगा राधा जी का दर्श जरूर मिलेगा ऐसी आशा बनी उत्कंठा कब मिलेगी कब मिलेगी कब मिलेगी हा हुताश करेगा रघुनाथ दास गोस्वामी रूप गोस्वामी बिल्व मंगल की भांति प्रबोधानंद सरस्वती की भांति नाम कीर्तन में रुचि होगी जरूर उसमें रुचि होनी चाहिए और कृष्ण के गुणगान में आसक्ति कृष्ण का गुणानुवाद करेगा और कृष्ण लीला की स्थलियों में प्रीति जहां पर कृष्ण की लीलाएं हुई हैं गोवर्धन राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज गोवर्धन नंदगांव बरसाना इत्यादि ये सब स्थानों में प्रीति ये सब लक्षण दिखाई देते हैं उसको अब विशेष रूप में बतला रहे हैं। क्षोभर कारण सत्य क्षोभ नहीं हो सदा कृष्ण भजे नहीं करे काल खोय कृष्णेतर विषय विरक्ति सदा रह मान थाकिले वो अभिमानी नहीं हो अवश्य पाइबे कृष्ण कृपा आशा करे कृष्ण भजे और अंतर व्याकुल अंतर हरे कृष्ण नाम गाने रुचि निरंतर श्री कृष्ण रे गुणाख्याने आसक्ति विस्तर प्रीति करे सदा कृष्ण वसति स्थाने यही अनुभाव भावांकुर विद्यमान। शांति शांति मैंने क्रोध का कारण उपस्थित होने पर भी मन की चंचलता का कारण उपस्थित होने पर भी शांत रहता है। क्यों शांत रहता है कारण क्या है तत्तेनुकंपा सुसुमिक्षमा हमारे कर्मों का फल ये भगवान की करुणा है ऐसा समझ करके अपने मन को प्रबोध दे देता है। और गीता में भी बतलाया गया है वो क्या श्लोक गीता का द्वितीय अध्याय का अंतिम है वितराग भय क्रोध स्थिति मुनि रुचिते क्या तुम्हारे हाँ सुखेशु विगत स्प्रिया सुख की स्प्रिया नहीं रहती जो सुख मिले दुख सुखेशु विगत दुख की भी कोई चिंता नहीं बीतरा संसार में आसक्ति दूर हो जाए और निर्भय हो जाता है जो कुछ हमारे कर्मों का फल है उसको भोगना पड़ेगा इसके लिए वो चिंतित नहीं होता उसको भगवान की कृपा मान करके उद्विग्न नहीं होगा उसको शांति कहते हैं। साधक में स्वतः से क्षमा गुण कहें जैसे यदि हमारी मां को कोई गाली दे तो सहले तो दे कोई कारण ही नहीं है तो तुम फिर कैसे उसको सजे कोई कारण होना चाहिए ना कोई गाली देता है तब भी सहलो वो गाली आपको स्पर्श नहीं करेगी उसी को स्पर्श करेगी अपमान भी करता है तो उसको सहलो। उदाहरण स्वरूप परीक्षित महाराज ने मुनि बालक श्रृंगी के द्वारा अभिसंपात हो पाया श्रृंगी ने परीक्षित महाराज को भी संपात किया और उन्होंने कहा कि सातवें दिन मरेगा सांप बैसेगा अच्छा, वो क्रोधित होकर के उसको मारा ना, क्या किया? चित्त उनका चंचल हुआ, जा भाई है मर जाऊंगा। ओ भगवान की ये बहुत कृपा, आज ही संसार से विरक्ति होकर के गंगा के तट पर जाऊंगा और भजन करूंगा। 7 दिन तो भजन को समय मिला, और इतने में ऋषि महर्षि सब आ गए, वशिष्ठ, अंगिरा, गौतम, इधर नारद जी, व्यास, सुखदेव, पराशर, सब लोग आ गए। उन्होंने कहा कहां ये अभी संपा, ये तो बर है जाए, इन लोगों का दर्शन नहीं मिलता। भगवान का दर्शन भी सुलभ है, ऐसे भक्तों का दर्शन सुलभ नहीं है, तो ये भगवान की कृपा है। ऐसे ही दुख आने पर सहो, भगवान की कृपा समझो, उसमें कोई ना कोई लाभ है भगवान के इस विधान में। इसलिए कभी घबराओ मत, चित चंचल मत करो, भगवान का भजन करो। इसलिए हम लोगों को जिसको भाव होता वो होगा, हम चाहने पर भी नहीं होगा, चित चंचल हो जाएगा। अभी एक सांप यहां पर आ जाए, छोड़ दे, देखो कहां भागेंगे हम लोग, सब हरि कथा रह जाएगी धरी। और परीक्षित महाराज जी को सांप काटने आएगा भी तो चुपचाप बैठे। अव्यर्थ कालोत्तम, 1 सेकंड समय भी 24 घंटे में से व्यर्थ न जाए, निरंतर हरि भजन में लगा रहे। खाना पीना भी आवेश में हो, उसके लिए कोई चिंता नहीं। भगवान ने जब मुख दिया है, पेट दिया है, तो वो देंगे, इसकी व्यवस्था उन्होंने कर रखी है। घर बार छोड़ा तो कभी स्वप्न में ख्याल था कि हम लोग यहाँ मथुरा में, वृंदावन में, और सारे विश्व के लोग हमारी सेवा करेंगे और सब कुछ देंगे, कैसे हो गया? सब कुछ दे करके भी कहते हैं कैसे गुरु जी की सेवा करें। ऐसे ही भगवान का भजन करने से, कल देखा वेश्या वहां पर बैठी रही और सब बड़े बड़े महंत लोग आते, कितने चीज लाते उसको देते, वो कुछ ग्रहण नहीं करती। एक बेला रोटी के लिए 2-4 रोटी और एक वस्त्र था, बस, कोई किसी से कुछ नहीं, अपने आप सब। वैसे नारद जी के चरित्र में देखा जाता है व्याध के लिए धनुष तोड़वा दिया, और उस धनुष तोड़ दिया और कहे तुम बैठो हरि नाम करो, और वो कैसा हो गया, लोग सब कितने देने लग गए। भगवान का भजन करने से कोई स्त्री पुरुष कोई भी हो, पुरुष ही नहीं, भगवान उसकी सारी व्यवस्था कर देते हैं। जो गृहस्थ में नहीं मिल सकता है वो सब कुछ मिल जाएगा, कोई चिंता नहीं है। चिंता है अपने दुष्ट मन की, उसमें भी खुराफात करता है। इसलिए अव्यर्थ कालोत्तम। रूप गोस्वामी का देखो, रघुनाथ दास गोस्वामी को देखो, शंखा पूर्वक नाम गान, नति भी कालाम सानी कृतो, निद्रहार विहार आद विजितो आतंत दीनौ चज, राधा कृष्ण गुण स्मृते मधुरिमा आनंदेन सम्मोहित, वंदे रूप सनातन प्रभु जुग श्री जीव गोपाल। 24 घंटा खाना भी कभी नहीं, कभी चना, कभी वो भी मना, कोई कमी नहीं थी उनके पास में। वो चिंतामणि पड़ी हुई है बालू में, भक्तियां उनको याद नहीं कि कोई चिंतामणि है, कोई प्रयोग नहीं, और दिन रात कभी कभी थोड़ा सा सो लेते हैं और स्वप्न में भी भगवान का ही स्वप्न देखते हैं, और कभी वो भी नहीं खाते, कभी शयन भी नहीं, एकदम ऐसा कठोर भजन करते थे। इसलिए इसका नाम अव्यर्थ काल है। कोई संसारिक झंझट आ गया, बस दिन रात उसी की चिंता करने लगे, भगवत भजन भूल गया, ऐसा मत करो। जो होना होगा तो होगा ही, भगवान का भजन ठाट से करो। मान शून्यता, जाति, वर्ण, आश्रम, धन, सौंदर्य, उच्च पद आदि से वह अभिमान होता है ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से। संन्यास ग्रहण करने पर सुंदर हो या सुंदरी हो खूब कोई गुण नहीं है, खूब सुंदर है तो उच्च पद यदि किसी को लाभ हो जाए, इस सब के रहने पर भी, सब प्रकार के गुण होने पर भी जिसको अभिमान नहीं है वही मान्य शून्यता है। यथार्थ में जब तक यह रति उत्पन्न नहीं होगी, भाव उत्पन्न नहीं होगा, तब तक नहीं होगा। हजार चेष्टा करो कुछ कपटता रह जाएगी, इसलिए चेष्टा किया जाए ये भाव उत्पन्न हो। आशा बंध, आशा बंध माने कृष्ण मुझ पर अवश्य ही कृपा करेंगे, राधा जी जरूर कृपा करेंगी, दृढ़ विश्वास के साथ में भजन में मनोनिवेश करो, जरूर करेंगे। ध्रुव प्रहलाद इत्यादि पर, नारद पर उन्होंने कृपा की है, महाप्रभु के समय में हजारों लोगों पर महाप्रभु की कृपा हुई है, हमारे ऊपर में भी जरूर उनकी कृपा हो। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी बिलाप पुष्पांजलि में आशा को इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, आशा भरय अमृत संदमय कथंचित कालो मयाति गमिता किल सांप्रतम ही तंचेत कृपा मई विधास्न कि प्राण प्राण ब्रजेन बरोरुपकारिणापि। हे बरोरु सुंदर जंघे वाली राधे परम सुंदरी, मेरी आशस रूप अमृत समुद्र को प्राप्त करने की भांति अत्यंत दुर्लभ है। मेरी आशा कैसे है, अमृत समुद्र को मैं प्राप्त करूं बहुत कठिन, ऐसे मेरी आशा है। आपकी दासी होने की मेरी लालसा है, किंतु ये बहुत ऊंची अरमान है। मैं उसे प्राप्त करने की आशा में बड़ी उत्कंठा से जीवन को धारण कर रही हूं। अब तुम मुझे दुख जानकर मेरे ऊपर कृपा करो, तुम्हारी कृपा के बिना मेरा जीवन, मेरा ब्रजवास और तो क्या, कृष्ण की सेवा भी मुझे नहीं चाहिए, सब कुछ हमारे लिए व्यर्थ, ऐसी भावना है। तो कहते हैं जैसे तुम्हारी हे राधे नहीं कृपा होगी तो हमको ब्रजवास करने की जरूरत है, राजा गुंड में वास करने की जरूरत, यहां तक कि कृष्ण की भी जरूरत नहीं यदि आपकी कृपा नहीं है। सम उत्कंठा अभीष्ट प्राप्ति के लिए प्रगाढ़ लोभ ही उत्कंठा है। ठीक तो पहले बतलाया आशा बंध जरूर मिलेंगे, तो जरूर मिलेंगे तो चुपचाप बैठ जाएंगे जब उनकी कृपा होगी होगी। नहीं, कृष्ण को राधा जी की सेवा प्राप्त करने के लिए प्रगाढ़ लोभ समुत्कंठा, कब मिलेंगे, वृत्तासुर कह रहे हैं, वृत्तासुर में उत्कंठा है, अजात प्रक्षायो मातरम खगा तन्नम जथा बच्चर तरा सुधारता प्रिया प्रिय विषितं विषन्ना मनोरम विदाक्ष दिदीक्षते। अजात पक्षामेव मातरम खगा, जिस पक्षी के डैने पंख नहीं उगे हैं वो क्या करती है, मातरम माता की सब समय चिंता करता है, माँ कब आएगी, मैया कब आएगी, मैया कब आएगी। तन्नम जथा बच्चरता सुधारता, ये तो मन में चिंता, और दूसरा है बछड़ा सुधार्थ बछड़ा गाय का, मैया के लिए चिंता भी करता और डांटा पुकारता है मैया को बड़ी दूर से, मैया सुन करके वो भी रंभाती है और पुकारती है और उसके निकट में आ जाती है। प्रिया प्रियेव विषितं, किंतु देखा जी इसमें कुछ स्वार्थ है, पक्षी अपने खाने के लिए और अपने डर को दूर करने के लिए मैया की चिंता करता है, बछड़ा दूध के लिए भूखा मैया को पुकारता है, इसलिए तीसरा उदाहरण दिया। प्रिय प्रिय व विशुतंग विषण। जिस प्रकार से प्रिय के बिछुड़न होने पर उनके विरह में उसकी प्रिया उसके लिए मन मन में चिंता करती है, उसका गुणगान भी करती है और सेवा की वासना भी रहती है। तीनों चीजें प्रिय प्रियो विशुतंग विषन्ना मनोरबिंदक। हे प्रभु, आपके चरणों में ऐसी मेरी प्रीति हो। नाम गाने सदा रुचि। अच्छा, यू शुड एक्सप्लेन देन। ठीक, रामचंद्र भी हैं। लो, विष्णु नहीं है, वो चला गया है। ना ना है, वो गया है परिक्रमा देने। बोल, पर बोल।
So why is that? Because his movies, his name comes from Sri Sumitra Maharaj. Whatever is happening to me, then it is not the fault of anyone. It is my own fault. It is coming as a result of my own karma, my own activities. Otherwise, or whatever situation is coming, this is Krishna's mercy upon me. So, see, Krishna described this meditation in Gita. Dukeshu Vignalakara, Sukeshu Vignalakara, Sriya, Vikaragakara, Dasli, Vikuni Uchate. A person whose mind is steady, then, even though there are causes of distress, but he's not disturbed. And neither does his mind become agitated or excited with the presence of causes for happiness. He's detached from anger, attachment, and fear. These are all the qualities. If someone will give an insult to such a devotee, he's never disturbed. We can see the example of Rishi Maharaj. He was cursed by Sri Rishi that he should die within 7 days. But Rishi Maharaj was undisturbed. He thought that this was great mercy. I'll go to the bank of the Ganga, and there I'll listen to Hari Katar. And when he went there, all sages, Vashishtha Rishi, Angira Rishi, Gautam Rishi, Narada Muni, Vyasadeva, and others, they all assembled there and gave him their darshan. So, the darshan of Bhagavan, it may be attained more easily than the darshan of such an assembly of great rishis. So he was very fortunate. So, if a snake would come into this assembly when we're all listening to Hari Kama would happen, everyone would get up screaming and run out from the room. But Krishna's Maharaj, when the snake bird was coming to bite him, he was waiting peacefully, no disturbance at all. So then, next symptom, Aryatakalpa. Means the devotee thinks, I should not waste a single moment. They continually engage themselves in Hari Bhajan without letting a moment pass fruitlessly. Next symptom, Virakti. Virakti means detachment. All types of material, happiness, or sense gratification may come, but that person has natural distaste for all of these things. For example, in the drama we saw yesterday, Srila Harinath Thakur, then the prostitute, after she had been converted to Vaishnavism, many famous people and wealthy people, they came and offered her so many things, but she never accepted them. She just accepted the minimum requirement to maintain her life. So actually, if someone will do bhajan, then they never worry about their maintenance, because Krishna will make all arrangements to maintain the life of a person who is trying to attain his devotional service. If anyone is doing bhajan, but in their mind they have some worry about how they'll maintain themselves, then this is just the action of a wicked mind. Just see the example of the life of Rupa Narayana. Sankhya Puru Kanala Gala TV. They spent their full time in chanting Harinam, paying obeisances, singing songs glorifying Radha and Krishna. So 24 hours a day, they are engaged in bhajan. Sometimes they would take some chickpeas, or sometimes they would not eat at all. Sometimes they would sleep for a few minutes, sometimes they would not sleep at all. Even if they would take rest for a short time, then while they were resting, in their dreams they would have the darshan of Radha and Krishna. So this is also an example of Avyavikalaka. Then, Manashunyata. Manashunyata means a person is born in a high caste, in a wealthy family, they're in an elevated ashram, such as Sannyas Ashram. They're very beautiful, they have a position in society, so they may have many things which are desirable by materialists. But at any point, they never have any pride in their position. This is called Manashunyata. If Rati will appear in the heart, then this disposition of being devoid of false ego is natural. And if Rati is not appeared in the heart, then any attempt to be humble in this way is not for real. There must be some duplicity there. So the sadhak should try very hard for Rati, then his humility will be genuine. Otherwise, then humility is sure. house of Radha. As for me, Krishna will definitely give me mercy. For example, the devotion thing, when Sri Chaitanya performed his pastimes, he distributed mercy to so many other entities. So surely, he will also give mercy to me. This very strong faith that one will receive mercy has been epitomized by the prayers of Srila Ramadas personified in Sri Vilapa Sunanjali in the verse Asha Parayana Vishindu Langa Katanchi. There he prays, O Guru, O Rajne, I desire to attain an ocean of nectar. What is that nectar? The nectar of your service. So the desire to attain the service of Radhika's lotus feet has been compared to the desire to attain an ocean of nectar. In other words, to get just one drop of nectar is extremely rare. So how rare it is to get an entire ocean of nectar. Yet still, I have this desire. And in this way, with this, the burden of this very strong desire, I am passing my life. If you will not give mercy to me, then what is the use of this life? What is the use of my residence in Vrindavan? And what was the use of all the service rendered to Sri Krishna? It was all useless. So this is called Ashwabandha. So then, what may you think? Because I don't think, I will definitely attain Krishna's mercy. Krishna will surely give mercy to me. So then, will you be complacent? You think, oh, definitely Krishna's going to give me mercy. So will you be complacent about that? No. The next symptom is samukhanta. It means very condensed greed. Oh, when will the mercy come? When will the mercy come? The example is given by Richard Suri Srimad Bhagavatam in the verse Ajatapakshari Mamatanakaka. Here, see, Ritrasura is praying, oh, when will I have such intense desire? How? Ajata Paksha, like a baby bird who has just been born. He has no feathers, cannot move, he cannot defend himself in any way. So that baby bird is always thinking, when will my mother come? When will my mother come? Continuously meditating like this. So in bhakti, the devotee, he should always be thinking, when will Krishna give mercy, when will Krishna give mercy? In the same way. Then, Richard Swami gives another example. Stanyam yata. Oh, just like a calf. The calf is thinking of the mother, but not only thinking, not only in chinta, but also loudly calling out to the mother. But then Richard Swami goes, in these two examples, there's some selfishness. Why? Even though the baby bird is absorbing thought of the mother, and even though the calf is absorbing thought and also doing kirtan, also calling out, yet still both of them have some selfishness. Why? They don't actually want the mother. The baby bird wants the food, and the baby calf wants the milk. So there's some selfishness in this. So he gave another example. It means that just as one heroine, her lover is far away, and she's waiting for him to come. So when she's in separation and waiting for the return of her beloved, at that time she thinks something, she also weeps in separation, like kirtan, and in addition to that, in her heart, she is nursing so many types of seva vasana. She has a desire not to take something from him, but rather she's absorbing thoughts of how to render service to him. So this example is perfect. So Vichasur was praying, when will I be engaged in devotional service with such an intense greed?
Gunakhyane asakti. Jab rati utpann ho jati hai, to Krishna ke उनके परिक्रम के गुणों का स्वयं कीर्तन करता है और किसी भक्त से श्रवण करता भी है। इसलिए कीर्तन और श्रवण में उनकी पिपाशा नहीं मिटती, और सुन और कहूँ और कहूँ वो अभी नहीं हुआ। नाम गाने सदारुचि, जितने प्रकार के भजन है उन सब में नाम भजन ही श्रेष्ठ है, विशेषकर के कलयुग में। इस विश्वास के साथ में निरंतर नाम लेने को नाम संकीर्तन कहते हैं। नाम भजन से कृष्ण अवश्य मिलेंगे, हमारी मनोवासना पूर्ण होगी, ऐसा दृढ़ विश्वास करके नाम कीर्तन होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि मृदंग ताल स्वर से गाया जाए, हारमोनियम से गाया जाए, कोई जरूरत नहीं। जिसको भगवान ने जैसा कंठ दिया है सुरीला अथवा जैसा, बस इस भाव के साथ में उच्च स्वर से नाम करना, ये नाम संकीर्तन है। अथवा सुखदेव गोस्वामी को संकीर्तन के लिए कहा गया है, सुखदेव गोस्वामी भगवान के गुणानुवाद कर रहे हैं, ये संकीर्तन है। हारमोनियम तबला इसराज बहाल या मृदंग बजा करके उन्होंने नहीं किया, इसलिए ओष्ट स्पंदन मात्रेण कीर्तनम भवति, इसलिए संकीर्तन हो वैष्णव के अनुरक्त में। नाम में रुचि का होना ये श्रेय प्राप्ति की कुंजी है, अपनी अभिलाषा पूर्ण होने की ये कुंजी है, चाबी है। नाम साधन और साध्य दोनों ही है, कृष्ण नाम साधन भी है और साध्य भी है। हरे कृष्ण महामंत्र ही सर्वोत्तम है, गौरचंद्र ने इसी की शिक्षा दी है, इसी नाम का कीर्तन। आजकल बहुत से कल्पित रसाभास युक्त कीर्तन होते हैं, उन नए आधुनिक में मत जाओ। चैतन्य महाप्रभु जी ने क्या कहा, यहा बिना ना बोलीबे आर ना बुलाइबे, कृष्ण मंत्र के लिए कहा है कि इसको छोड़ करके और न कहेगा कीर्तन करेगा और न दूसरा। अधिक से अधिक हम लोग महापुरुषों के जो अब सांप्रदायिक महावैष्णव हैं, रूप गोस्वामी के राधे जय जय माधव, और दूसरे संप्रदायों में तुलसी जग का भी ले सकते हैं, तुलसीदास जी हैं, मीराबाई जी हैं, सूरदास जी हैं, इनको भी लिया जा सकता है। और हमारे संप्रदाय के गोविंद दास जी और लोचन दास ठाकुर, नरोत्तम ठाकुर, प्रेमानंद, ये कीर्तन बहुत ही सुंदर है। चंडीदास, विद्यापति, ये सब कीर्तन हो। और भक्ति विनोद ठाकुर, जसोमती नंदन बरना गोकुल रंजन कान गोपी परधन मदन मनोहर अलिया दमन विधान, सब कुछ इसमें आ गया। इस कीर्तन में कुछ बाकी नहीं रहा, सारी लीलाओं को। और भी एक कीर्तन उनका है, विभावरी शेष आलोक प्रवेश, सब सब लीलाएं उसमें। भक्ति विनोद ठाकुर जी परफेक्ट है, यू कैन फॉलो भक्ति विनोद ठाकुर, माई सेल्फ ऑल्सो। और दूसरे कीर्तन में नहीं जाओ, ब्रज में देखते हैं कहीं कहीं ऐसा भी करते हैं, राधे राधे श्याम, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, ये सब करते हैं। और कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, वो तो बंगाल में है, इधर में यहाँ भी है, और भी है सब, बहुत बहुत। और अभी याद पड़ा तुमने कह दिया, भूल गया। हाँ राधे राधे श्यामलन, कौन था हिंदी में जो हम लोग अनुमोदन कर दिए हैं, जो अपने पुस्तक में है वो करे अनुमोदन वाला। हम लोग जानते हैं ना, समझते हैं, तुम लोग नहीं समझेगा। तो यहाँ तक कि पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी ने उज्ज्वल वर्ण गौरवर देहम को या किसको है नहीं, कौन सा को उन्होंने कहा था यह रसाभास है, मन नहीं करना चाहिए करते, वो नहीं कर लेते। पूज्यपाद श्रीधर महाराज किसी कीर्तन के लिए जो सब जगह चालू है किंतु मना करते थे, नहीं करना चाहिए, रसाभास दोष है कुछ। तो ये देख सुन करके हमारे वैष्णव के द्वारा, अंततः गुरुदेव के द्वारा अनुमोदित हो भाई, अंततः गुरुदेव ये अनुमोदन करते हैं, तब तो करो और नहीं तो मत करो कीर्तन। राधे राधे श्याम मिलादे, ये अत्यंत रसाभास दोष है, बहुत रसाभास दोष है। हाँ राधे राधे बोलो, चले आएंगे श्याम बिहारी, क्या क्यों जरूरत है तुमको श्याम बिहारी की, क्या जरूरत है। कृष्णा आख्यान गुणाख्यान में आसक्ति, जिसको रति उत्पन्न हो जाती है अपने आप स्वाभाविक रूप में कृष्ण के गुणों को सुनता है और उनकी मधुर लीलाओं का वर्णन करता है, और कोई करता है तो सुनते हैं। यहां तक कि छोटी छोटी उम्र का कोई भी हो और वो भी कृष्ण कथा बोल रहा है तो वो सुनेगा। महाप्रभु जी स्वयं टोटा गोपीनाथ में जाते थे सुनने के लिए गदाधर पंडित की भागवत कथा, और रूप गोस्वामी भी रघुनाथ भट्ट की कथा सुनने के लिए जाते, और भी जहां हो रही है। किंतु देखो जैसे वक्ता रसाभास दोष वाला नहीं हो, ये भी देखना है। आजकल अधिकांश मायावादी भागवत की कथा बोलते हैं, और जो कुछ है भी वो भी सांप्रदायिक शुद्ध रूप में नहीं कहते हैं, उसमें कुछ न कुछ त्रुटि रह जाती है। इसलिए जहां तहां सब समय भागवत की कथा सुनने मत जाओ, किंतु सांप्रदायिक शुद्ध विचार का, अभी अल्प वयस्क का भी कोई साधक भी हो तो उसे सुना जा सकता है। जब कथा सुनता है या वर्णन करता है समय का ख्याल नहीं रहता, उसकी पिपाशा नहीं मिलती, और सुनूं या और बोलूं, तसे बसते स्थले त्रिकी वृंदावन धाम में, नवदीप धाम में, भगवत धाम में, विशेष करके राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरिराज, गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना, उद्धव क्यारी, भंडीर भट्ट इत्यादि स्थानों में रहने की अभिलाषा को, प्रीति को, बसत स्थल में प्रीति, यदि नहीं हो सकता तो मन ही मन में ध्यान में भी वही समझो कि मैं वृंदावन में हूं, यमुना के किनारे हूं, राधा कुंड में वास कर रहा हूं, ऐसा मन ही के द्वारा। किंतु एक दिन आना पड़ेगा ब्रज में, ऐसी कृष्ण भक्ति की जरूरत होगी। तो धामवास का लाभ तभी है यदि शुद्ध भक्तों का संग मिले। शुद्ध भक्तों का संग नहीं मिलने से धाम में अकेले रह करके गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे और करेंगे, कुछ भी अधिक नहीं होगा, थोड़ी बहुत कुछ। किंतु यहां रह करके यदि शुद्ध वैष्णव का संग हो, हरि कथा ऐसी सब सुनने में मिले तो ब्रजवास का कुछ लाभ है। गौर अमार जे सब स्थान करिल भ्रमण रंगे, से सब स्थान हरिवामी प्रणय भक्त, ये किसका है, भक्ति विनोद। धामवासी जने प्रणति करिया मांगे को कृपा दे। गौर अमार जे सब स्थान, चैतन्य महाप्रभु जिस जिन स्थानों में भ्रमण किया उस स्थानों को प्रणय भगत संग में, भक्तों के संग में मैं परिक्रमा, जैसे हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं, प्रभुपाद के समय में परिक्रमाएं हुई, इसीलिए उचित लाभ देने के लिए ये लोग करते हैं, पैसे का व्यवसाय इत्यादि के लिए नहीं। आज इतने आदमी, हजारों आदमी आ रहे हैं, कितना भक्ति का सुयोग है। तुलसी परिक्रमा हो रही है, धाम की परिक्रमा हो रही है, हरि कथा हो रही है, साधुओं का संग हो रहा है, नाम कीर्तन हो रहा है, सभी एक साथ में। इसलिए शरीर के द्वारा धाम वास न हो तो मन मन में भी धाम वास की चिंता करो। भोग मोक्ष की कामना करने वाले कर्मी और ज्ञानियों से उल्लिखित भाव यदि दिख भी पड़े तो समझो ये प्रतिबिंबारस्त्याभास है, शुद्ध भाव नहीं है, छाया भक्ति भाष का आ जा सकता। आज यहीं तक रहे, बी रेडी फॉर ड्रामा प्ले। हाँ, यू शुड। विष्णु कर सकता है जो बतलाया, आखिर ये बोले तुम कर सकता है तो चेष्टा करो। आ जाओ, चेष्टा करो, सीधा बैठो, खड़ा हो, सीधा उधर उधर ऐसे। हाँ, आप लोग सुनिए, डोंट मेक नॉइज़। More loud.
Devotee has Naam Kali Sada Ruchi, that he has always intense faith that if I do Naam Bhajan, then certainly I will attain the lower speed of Thought in Krishna. Guru just said that it's not necessary that we need to have nice Karadas and Gudan to do Kirtan. We cannot even have a very sweet voice. What is important is love and faith, and with loud voice we must chant the holy name. Shukdev Goswami did not have any katar on the dhan, but he just glorified the gunas of Krishna. This is also killed, and glorifying the pastime of the Lord is also given. Here the next day, that the chanting of the holy name, that itself is our goal, and that is the cause also. It is a sadhan as well as a
sadhan.
Gurudev says that today many devotees chant the kirtans in which there is some ras abhas. We must be very careful not to sing those sadhans. We can sing the sadhans of Tulsidas, Kirati, Surdas, and in our
sadhana
there are so many exalted
हम लोग सब लोग व्यस्त रहेंगे ठाकुर जी के प्रतिष्ठान साकार का जैसे ही आरम्भ।
We must chant only those prayers which have been, for which permission has been given by Guru
Dev.
Some people in this Pradhan
Raghun can chant
like Radhe, Radhe Shyam, Radhe Radhe, Nato, Chari Mani, Bihari. So these, there is a lot of conflict of lusts, the mellows in this, so we should not chant in the
prayers. Dhamma Raghun.
Then, after this it says, the next one says, Gunakran,
देखो काल के ऊपर में किसी का है।
That a devotee has intense attraction God and describing the glories of Krishna, full Arjan. Arjan means and describing the goodness of aspect of Krishna.
मैं तो देख रहा था कुछ सुधार हो रहा है.
Mahaprabhu also used to go to Lord Gopinath to hear Jagannath Pandit giving discourses on Srimad Bhagavatam. Shri Rupa Goswami also used to go and hear from Jagannath Das Goswami, Jagannath Goswami. So we should also go and hear Srimad Bhagavatam, but not from those who are not Vaishnava devotees. The person speaking Srimad Bhagavatam may be younger, but he must be speaking according to the principles of our sampradaya. These days there are many Mayavadi who are also speaking on Srimad Bhagavatam, but we must be very careful of going and listening from them. Once, when a devotee is completely absorbed and in the stage, he is so absorbed in the chanting of glories of Krishna and speaking about him that he also completely forgets the limits of time. And one must also try to stay in Sri Vrindavan and Radha Kunjavan, if not physically, then through our mind, through our intense meditation on Vrindavan and Radha Kunjavan. But then Gurudev says that we must also come and physically stay at these places, that is our ultimate goal. But what is the real importance of these places? The real importance is that we get the association of pure, very exalted Vaishnavas. Without their association, the dham itself, saying dham, has no purpose. So we must seek the association of pure devotees while in the dham. Then, says there,